सभी ने सुना हम अमृत वेले को कैसे एंजॉय करें और मुरली का रस और ज्ञान का बल अपने जीवन में कैसे लाएं। आज हम चर्चा कर रहे हैं सारा दिन मनुष्य कार्य व्यवहार में लोगों के संग कलयुग के वातावरण में अनेक समस्याओं को फेस करता हुआ अपनी सारे दिन की यात्रा को पूर्ण करता है। हमें उसमें एक रस रहना है। हमारी एक रस स्थिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या अर्थ है एक रस का? एक के रस में हम रहें, एक जो परमात्मा है, जो ज्ञान का सागर है, जो सुखों का सागर है, जो अतिंद्रिय सुख प्रदान करने वाला है, जो प्यार का सागर है, उससे हमें सारा दिन रस मिलता रहे। ये रस आत्मा को कभी भी नीरस नहीं होने देता। और जैसे भगवान वाच है कि अगर एक रस स्थिति बनानी है तो पहले तो एक शिव बाबा के रस में रहें और दूसरा ध्यान दें कि हम कर्मेंद्रियों के रसों से स्वयं को मुक्त करें। तो आज बहुत प्रैक्टिकल चर्चा हम करना चाहते हैं ताकि हरेक मनुष्य जिन्होंने ज्ञान लिया है, विशेष रूप से वे आत्माएं, अपने जीवन की यात्रा का बहुत आनंद लें। जब वो घर लौटे सारा दिन कार्य करके तो वो थके हुए ना हों, वो किसी प्रेशर को लेकर रात को न सो जाएं, वो टेंशन और चिंताओं में अपने परिवार के साथ जीवन शाम का विशेष रूप से समय व्यतीत न करें। हम क्या करें? मुझे विश्वास है सभी को अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने का संकल्प अवश्य है। और भला संसार में ऐसा कौन होगा जो अपने को सदा खुश न देखना चाहे, जो कदम कदम पर सफलता का वरदान अनुभव करना न चाहे, संबंधों में जो बहुत स्वीट, सबके साथ बहुत स्वीट समय व्यतीत करे, ऐसा हर व्यक्ति चाहता है। तो हम अपने जीवन को कुछ सिद्धांतों में बांध लें, कुछ चीजों को अपने जीवन में सदा के लिए अपना लें। पहले हम इसकी चर्चा करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, सबसे सुंदर समय विशेष रूप से भगवान के बच्चों को मिला है, ब्रह्मा वत्सों को मिला है, ब्रह्म मुहूर्त का। जब सारा संसार सोता है तब वे जगते हैं, प्रभु मिलन करते हैं। आंख खुलते ही सबकी मुलाकात अपने प्राणेश्वर, अपने खुदा दोस्त प्यार के सागर से होती है। सवेरे ही जैसे जीवन में रस भरने लगता है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है सवेरे की शुरुआत, हम कैसे अपने दिन को शुरू कर रहे हैं। तो दो सुंदर अवसर हमें रोज प्राप्त होते हैं। ये स्वर्णिम अवसर हैं जब सवेरे सवेरे स्वयं भगवान हमसे गुड मॉर्निंग करते हैं और हमसे मिलन मनाते हैं, हम में शक्तियां भरते हैं, हमें वरदानों से सजाते हैं। और दूसरा समय जब वो स्वयं हमें पढ़ाने आते हैं। सोचें, भगवान पढ़ा रहा हो और हम सोए हों तो उसके आशीर्वाद से भी तो हम वंचित हो जाएंगे। भगवान ज्ञान के रहस्य खोल रहा हो और हम अलबेलेपन में जीवन जी रहे हों तो उन रहस्यों से तो हम अवश्य ही वंचित रह जाएंगे। तो इन दोनों चीजों का सुख हमें सवेरे सवेरे प्राप्त करना है। मैं इन शब्दों में कहूंगा कि रोज सवेरे हरेक अपने को चार्ज करे। सारा दिन हर मनुष्य को जैसे कि युद्ध के मैदान पर उतरना पड़ता है। किसी का जीवन संघर्ष बन चुका है, किसी का जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, किसी को कदम कदम पर चैलेंजेज का फेस करना पड़ता है। बहुत सारी बातें जो कलयुग में आप सब जानते हैं, देखते हैं, उसमें ही हमें रहना है। तो सवेरे हम अपनी शक्तियों को जागृत करें। अगर हम सवेरे सवेरे ईश्वरीय वरदान ले लें, अगर हम सवेरे सवेरे अपने को ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर कर लें तो हम ऐसा कहेंगे कि हम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के मैदान में जाते हैं, विजय का तिलक लेकर, सफलता का वरदान लेकर हम युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो हमारी विजय होगी। और अगर हम भागदौड़ से युद्ध के मैदान में जाएं, कोई हथियार छूटे, कोई साथ लें, भोजन छूट जाए, पानी छूट जाए, कोई गोला बारूद छूट जाए, तो भला इस युद्ध के मैदान में हमारी जीत कैसे होगी, हम इसका आनंद कैसे लेंगे? तो पहले स्वयं को सवेरे सवेरे चार्ज करें। जैसा हम चर्चा करते रहे हैं, सवेरे का समय हम सभी के लिए बहुत सुंदर होता है। विशेष रूप से जब हम सवेरे उठते हैं तो उठने के बाद के 10-15 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहता है। ये वो समय होता है जब कॉन्शियस माइंड भी जागृत है और सबकॉन्शियस माइंड भी जागृत है। जो अर्धचेतन मन है, अवचेतन मन है, वो पूरी तरह काम कर रहा है, और जो चेतन मन है उसको हम कुछ अच्छे संकल्प, अच्छी विजन, अच्छा लक्ष्य दे सकते हैं। तो हम सावधानी पूर्वक इस समय का सदुपयोग करें, अपने को चार्ज कर दें। सभी ने सुना ही होगा कि रोज जब कर्म क्षेत्र पर जाओ तो बाबा ने कहा तो बाप से वरदान लेकर जाओ। रोज सभी सवेरे के समय और कर्म क्षेत्र पर जाते समय एक अभ्यास करेंगे, एक अनुभव करेंगे कि बाप दादा मेरे समक्ष विराजमान हैं, मुझे दृष्टि देते हैं और अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं, मुझे विजय का तिलक लगाते हैं, याद दिलाते हैं, बच्चे विजय तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वरदानी हाथ सिर पर रखकर हमें वरदान देते हैं, बच्चे तुम विघ्न विनाशक हो, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता तो तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी, मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ, तुम इस संसार में अकेले नहीं हो, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं, मेरे वरदान तुम्हारे साथ हैं, मैं भी 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ। ये आत्म जागृति है, ये हमें रोज करना भूलना नहीं है। मान लो आप देर से भी उठते हैं तो भी ये अवश्य करें, कार्य क्षेत्र पर जाने से पहले ये करके जाएं तो आप महसूस करेंगे जिन संकल्पों से आपने सवेरे सवेरे स्वयं को चार्ज किया उनके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगे और सारा दिन कर्म के क्षेत्र में वो आपके साथ हैं, हर कर्म पर उसका संपूर्ण प्रभाव आपको दिखाई देगा। ये बहुत सुंदर अनुभव सभी को करना है। अगर हम स्वयं को कुछ अच्छे संकल्प दिए बिना ही कर्म में जाते हैं तो जैसे हमारा खाली मन, हमारे निगेटिव विचार, हमारा कोई अपना संस्कार, कोई पास्ट के दिन का इफेक्ट, उसके वाइब्रेशंस हमारे कार्य पर अपना पूरा प्रभाव डालेंगे, सफलता के मार्ग में अनेक बाधाएं आ जाएंगी, बिना मतलब कोई न कोई आकर हमारा मार्ग रोकेगा। तो सबसे पहले हम स्वयं को चार्ज करेंगे सवेरे, बहुत आनंदित हो जाएं आप, उठते ही करें तो बहुत सुंदर, भूल जाएं तो योग के बाद कर लें। 6 बजे तक कभी भी आपको 5-7 मिनट स्वयं को चार्ज करना है। जैसे मैंने संकल्प सुनाए आपको, वैसे और भी संकल्प हैं। सवेरे सवेरे आप अपने को याद दिला दें, मैं तो ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मेरे भाग्य का सितारा स्वयं बाबा ने चमकाया है, भाग्य विधाता स्वयं मेरा है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, सफलता मूर्त हूँ, विजय रतन हूँ, बहुत सुखी हूँ, शांत हूँ, तनाव मुक्त हूँ, सभी विघ्नों से मुक्त हूँ, मेरा जीवन निर्विघ्न है, खुशियों से भरा, शांति से भरा, प्रेम से भरा हुआ है, सब हमारे अपने हैं, मैं पूर्वज हूँ, सब हमारे अपने हैं। तो आप इस स्मृति में आ जाएंगे तो आपके वाइब्रेशंस उन सबको सवेरे से ही जाने लगेंगे जो आपके साथ काम करने वाले हैं, चाहे आपके नौकर हों, चाहे आपके साथी हों, आपके जूनियर हों, आपके सीनियर हों, आप ऑफिस में हैं, आप बिजनेस में हैं, आप गृहिणी हैं, आप वर्किंग हैं या घर में रहते हैं, सबको स्वयं को सुंदर संकल्पों से चार्ज अवश्य करना है। अपने को ऐसे संकल्प देने हैं, मेरा जीवन बहुत सुंदर है, मैं तो धन्य धन्य हो गई, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, भगवान मुझे भाग्य देने मेरे घर में आ गया है, उसने मुझे संपूर्ण ज्ञान दे दिया है। अपने को चार्ज करेंगे सवेरे सवेरे, इसलिए मुरली सुनना भी रोज बहुत आवश्यक होता है, ताकि उससे हम चार्ज हो जाएं, हमारे विचारों में महानता आ जाए, मन पर कोई भी निगेटिविटी है, कोई प्रेशर बना हुआ है, किसी ने हमारी खुशी छीन ली है, फिर से आत्म जागृति आ जाए। जो नहीं सुनते उन्हें पढ़ना अवश्य चाहिए, और पढ़ना भी ध्यान से चाहिए, ऐसा नहीं काम उतारने के लिए 5-7 मिनट में मुरली पढ़ लें और कोई समझ लें कि हम तो मुरली की हर बात को जान गए, समझ गए, हमारे अंदर चली गई, इतने से काम नहीं चलेगा। आधा घंटा अवश्य आप दें, एक एक बात पर अच्छी तरह विचार करें, उसको अपने अंतर मन में समाने दें, कुछ अच्छी बातें लिखें भी, जैसा आपका आधा घंटा स्वाध्याय में बीत जाए। आगे चलें, हमारे पास फिर समय होता है मुरली से, और जब तक आप कार्य क्षेत्र पर जाते हैं, कोई 10 बजे जाते हैं, कोई 11 बजे जाते हैं, किसी को थोड़ा पहले भी जाना होता है, यदि आपको बस में यात्रा करनी है अपने ऑफिस तक जाने के लिए, तो इस समय को भी आप यूज किया करें। आपको 1 घंटा लगता है, किसी को 1.5 घंटा लगता है रोज, कोई महानगरों में रहते हैं, भीड़ भाड़ में जाना पड़ता है, तो भी हम कुछ अच्छे अभ्यास अवश्य करें। जैसे मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, आप एक लक्ष्य बना लें कि मुझे इसे 1-1.5 घंटे में सबको वाइब्रेशंस देते हुए चलना है। बस चल रही है या ट्रेन चल रही है या कार चल रही है या बाइक पर आप हैं, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ। बाइक भी आप चलाते हैं तो बस इतना कर लें, बहुत फास्ट नहीं, एंजॉय करें, थोड़ा सा 5-7 मिनट ज्यादा समय लगा लें और अच्छे अभ्यास करते हुए चलें। ऐसे बीच बीच में अभ्यास करें, मुझ आत्मा से शक्तियों की, पवित्रता की, शांति की किरणें निकलकर आगे आगे फैलती जा रही हैं। है, हम भी सामने देखते हैं जब बाइक चलाते हैं तो मेरे मस्तक से किरणें निकलकर सामने सामने फैल रही, जैसे आपकी बाइक में सामने ही लाइट होती है, उसका प्रकाश जैसे सामने फैलता है, वैसे ही मुझसे आत्मा से ये चेतन प्रकाश, ये शांति की किरणें, ये पवित्रता के वाइब्रेशंस आगे आगे फैलते जा रहे हैं। ऐसा एंजॉय करें, एक लक्ष्य बना लेंगे सवेरे से ही कि मुझे आज सारा दिन अपने हर कर्म को एंजॉय करना है। किसी किसी की बहुत बिजी लाइफ होती है, और जैसा बाबा ने हमें कहा है, बहुत लोग कर्म क्षेत्र पर जाते ही कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, यानी कर्म में हो जाते हैं, उन्हें कर्म के अलावा कुछ भी याद नहीं रहता, कर्म का इफेक्ट उनके मन के हर विचार को एक अलग दिशा देने लगता है। कर्म भारी है, कहीं कर्म उनकी खुशी को छीन रहा है, कहीं उन्हें किसी को कुछ कहना पड़ रहा है, किसी को डांटना पड़ रहा है, तो कहीं उन्हें किसी की बात सुननी पड़ रही है, इससे स्थिति पर असर आता है। एक संकल्प रख लें, मुझे हर कर्म को एंजॉय करना है, मुझे हर कर्म को लाइटली करना है, मैं तो एक्टर हूं। अब देखिए कर्म क्षेत्र पर आप ये फीलिंग लेकर जाएं। एक हीरो एक्टर अगर स्टेज पर आता है, उसका भी तो एक्ट करना एक कर्म है, तो संकल्प करे वो भी संकल्प रखता है ना, मुझे अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले करना है। हम भी संकल्प करें, हम ये काम नहीं कर रहे हैं, ये तो हम एक्ट कर रहे हैं, हम हीरो एक्टर हैं आत्माएं, और मुझे भी अच्छे से अच्छा एक्ट करना है। इसका अर्थ है कि हम कर्म ऐसे ढंग से करें कि देखने वाले आनंदित हो जाएं कि देखो ये भी बहुत बिजी हैं लेकिन ये कर्म को एंजॉय कर रहे हैं, ये भी बहुत इजी हैं लेकिन ये बहुत इजी हैं, बहुत लाइट हैं, ऐसे बिल्कुल मुस्कुराते हुए, मन में गीत गुनगुनाते हुए, बाबा की महिमा का गुणगान करते हुए कर्म का आनंद लें। मुझे विश्वास है आप सभी को ये बात अवश्य पसंद होगी और इसकी आप शुरुआत करेंगे। एक तीसरा सिद्धांत भी हम अपने जीवन का अवश्य बना लें कि कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बातें आएंगी घरों में, बहुत सारी बातें आती हैं। माताएं जो घरों में रहती हैं, बच्चों को संभालती हैं, बच्चों का इफेक्ट बहुत आ रहा है आजकल, बच्चों की बीमारियां, बच्चों के बुरे संस्कार, बच्चों की चंचलता, मां को वो नहीं करने देते जो वो करना चाहती हैं। बहुत सी समस्याओं के केस हमारे पास आते हैं, छोटे छोटे बच्चों से, 8-10 साल के लड़के और लड़कियों से मां बहुत दुखी, कहीं बाप बहुत परेशान। देखिए ये हमारे सबके पूर्व के कर्मों का हिसाब किताब भी है, इसको भी हमें लाइटली पूर्ण करना है। और इसकी बहुत अच्छी विधि है कि अगर आपके घर में ऐसी समस्या है तो आप अपने बच्चों को आत्मिक दृष्टि से देखें, उन्हें देखकर आप ये संकल्प करें ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ये देवकुल की महान आत्माएं हमारे घर में आई हैं। आप अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट कर दें अपने घर में, आप ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करें कि उनका पास्ट का जो कुछ हो वो दब जाए, कम से कम दब अवश्य जाए, नष्ट तो बाद में होगा। तो उनके वाइब्रेशंस आपको अफेक्ट ना करें, आपके वाइब्रेशंस उनको अफेक्ट करें। इसके लिए घर में किसी बहुत अच्छे स्वमान का अभ्यास, जैसे अभी पीस ऑफ माइंड चैनल चला है, उसको आप घर में चलाएं, बीच बीच में घर के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हो जाएंगे, उसमें बहुत सुंदर बातें होती हैं। संसार के चैनल्स और हमारा पीस ऑफ माइंड चैनल, इसमें तो रात दिन का अंतर है, ये अलौकिक है पूरी तरह से। स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस इससे फैलते हैं, जिस घर में ये चैनल लगा है लोग हमें सुनाने लगे हैं वहां तंत्र मंत्र का प्रभाव भी समाप्त हो गया, वहां के वाइब्रेशन जो हैवी रहते थे वो लाइट हो गए, वहां खुशी का माहौल हो गया। भले ही आपके बच्चे या साथी ज्ञान में ना हो लेकिन थोड़ा समय भी आप चलाएंगे तो वाइब्रेशंस बदलने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो घरों में भी खुशी का माहौल बनाएं सब माताएं विशेष रूप से, ऐसा ना हो भोजन बन रहा है और मन टेंशन में है, भोजन बन रहा है मन में पर चिंतन चल रहा है, किसे लड़ाई झगड़ा क्रोध हो रहा है, बच्चों पे डांट डपट हो रही है, होमवर्क नहीं करते बच्चे, खेलने कूदने में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो माताएं अपनी हर इच्छा को अपने बच्चों पर थोपे नहीं, देखो भगवान भी तो हमसे कुछ इच्छा रखता है, हम उनकी इच्छाओं को कितना पूर्ण करते हैं। तो थोड़ा लाइट हो जाए घरों में, चलें फिर से वहीं। जब हम कर्म क्षेत्र पर उतरते हैं तो कुछ सिद्धांत भी बनाएंगे और कुछ अभ्यास अपने साथ लेकर चलें। मैं आप सभी को याद दिला दूं, अव्यक्त बाबा ने हम सभी को अभी अभी एक बहुत सुंदर काम दे दिया, जो काम हम सबके लिए बहुत बहुत कल्याणकारी है, और वो काम दिया के बीच बीच में 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट ऐश्वर्यपन का अभ्यास करें। ये बहुत बड़ी जादुई शक्ति है हमारे पास, ये बहुत बड़ी मेडिसिन है हमारे पास, ये हमारी समस्याओं का समाधान है जो हमारे पास है। तो हम समस्याओं में उलझकर जितना समय व्यर्थ में लगा देते हैं, हम निगेटिविटी में फंस कर जितना समय वेस्ट कर देते हैं, उससे थोड़ा सा समय हम ये अभ्यास करें, दोनों चीजें जोड़ लें, मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं, बिल्कुल अपने को अलग अलग देखें, अपने स्वरूप को देखें, थोड़ी देर बस अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं चमकते हुए ज्योति हूँ, मुझसे चारों ओर प्रकाश की रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। अपने स्वरूप में आ जाएं। ये देह मेरा है, मैं इसकी मालिक हूँ। इसी के साथ कोई स्वमान जोड़ दें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं मास्टर दुख हरता हूँ, मैं तो पूर्वज हूँ, मैं तो जहान का नूर हूँ। एक स्वमान, दो तीन स्वमान, जो भी आपको पसंद हो वो इसके साथ जोड़ दें। कभी एक मिनट इसका अभ्यास करें, कभी दो, कभी तीन मिनट। इसको हल्का न करें। इसको हल्का नहीं करेंगे तो जीवन में बहुत हल्के हो जाएंगे। इसको इग्नोर करेंगे तो जीवन की हर बात आपको बहुत भारी करने लगेगी। तो इससे हम चार्ज होते रहेंगे, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति घंटे में दो बार ये कर ले, केवल दो मिनट दे दे, एक एक मिनट करके दो बार करे, तो उसको महसूस होगा कि जो तब तक आने वाली टेंशन थी मन में, तब तक अगर कोई निगेटिविटी आ गई थी, वो इस निराकारी स्वरूप में समा गई, लीन हो गई, खत्म हो गई। ये बहुत सुंदर अनुभव सबको होगा, इसलिए इसको बहुत ज्यादा महत्व देना है। इसको हल्का नहीं करना है, इस बारे में अलबेले नहीं होना है। कोई कहते हैं हम तो भूल जाते हैं, भूल तो जाते हैं, लेकिन भूलने से नुकसान किसे होगा। देखिए, कई लोग ऑफिस में काम करने वाले बार बार चाय पीते हैं, वो भी तो हम करते हैं ना। हमें प्यास लगती है, हम पानी भी तो पीते हैं ना। ऐसे ही हम अपने नियम बनाएं कि घंटे में कम से कम एक बार तो हमें ये अच्छा अभ्यास करना ही है। तीसरा अभ्यास भी जोड़ सकते हैं, बाबा मेरे साथ है, परमात्म शक्तियां मेरे साथ हैं, वो हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है, उसकी शक्तियां मेरे साथ मदद कर रही हैं। ऐसे ऐसे संकल्पों से आप सबसे पहले तो ये अनुभव करेंगे, लाइट रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। लेकिन बहुत सुंदर बात यह होगी कि समस्याएं और विघ्न कम से कम आएंगे। मनोस्थिति बिगड़ती है तो समस्याएं बढ़ती हैं। कई लोग बहुत कहते हैं कि जिन लोगों के साथ काम करते हैं, उनके बुरे बोल, उनके बुरे संस्कार, उनके वाइब्रेशंस, उनके कमेंट्स, उनके रफ शब्द हम पर इफेक्ट करते हैं। इससे भी हमें अपने को सेफ करना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, सबसे बुरा इफेक्ट मनुष्य के अपने विचारों का और संस्कारों का मनुष्य के ऊपर पड़ता है। दूसरों की बातों को तो आप मुस्कुरा कर हल्का कर दिया करो। हर बात पे रिएक्ट न करें, हर बात को अंदर न जाने दें, मुस्कुराए आगे बढ़ गए। इसलिए एक स्लोगन अपने पास रख लें, मुस्कुराइए समस्याओं को भगाइए, सहज करते चलें। दूसरा क्या कह रहा है उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो तो खाली घड़े हैं। खाली घड़े से आप पानी निकालोगे, आप प्यासे ही रह जाएंगे। उनसे आपको कुछ कामना नहीं, आपको तो उन्हें देना है। तो दूसरों से प्रभावित हुए बिना हम अपने स्वमान में रहें। एक बहुत पावरफुल ओरा, प्रभा मंडल रोज अपने चारों ओर क्रिएट कर लिया करें, क्योंकि हम देख रहे हैं, जैसा बाबा के भी महावाक्य हैं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, पांचों विकार और प्रकृति के पांचों तत्व फुल फोर्स से अटैक करेंगे। ये बात हमें याद करनी है। हम देख रहे हैं, आप सब देख सकते हैं, संसार में काम की मानो आग लगी हुई है, काम अग्नि तेज होती जा रही है। केवल युवकों में नहीं, बड़ों में, बूढ़ों में भी इस वासना का प्रकोप दिखाई दे रहा है। लोग युवकों की शिकायत करते हैं, पर बात केवल युवकों तक नहीं, बड़े भी इस महाविकार के बहुत ही अधीन हो गए हैं। समस्याओं का वास्तव में मूल कारण भी यही है। हर जगह जो निगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, उनका भी मूल कारण यही है, क्योंकि काम वासना से क्रोध में वृद्धि होती है, काम वासना से विचार निगेटिव होते हैं, काम वासना से बुद्धि का ह्रास होता है, काम वासना से मनुष्य का मोह ममत्व बढ़ता है, उसकी इच्छाएं बढ़ती हैं, देहभान बढ़ता है और इससे उसके चित्त में अशांति पैदा होती है। तो जो व्यक्ति खुद अशांत होगा वो समस्याएं क्रिएट करेगा। जो व्यक्ति शांत है, जो बहुत खुश है, जो बहुत सरल चित्त और मधुर है, वो समस्याओं का समाधान करेगा। तो ये जो काम की अग्नि संसार में तेज जल रही है, सबकी ड्रेस ऐसी हो गई है, सबका फैशन ऐसा हो गया है, सबके विचार ऐसे हो गए हैं, घर घर में चलने वाले चैनल्स में दिखाए जाने वाले दृश्य मनुष्य की वृत्तियों को और विकृत कर रहे हैं। अच्छी बातें लोग चैनल से नहीं सीखते, उन्हें तो शायद देखते भी नहीं, केवल निगेटिविटी सीखते हैं। हमें अपने चारों ओर पावरफुल प्रभामंडल क्रिएट करना है। इस बात पर सभी सावधानी पूर्वक विचार करें और ये काम शुरू कर दें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, इन संकल्पों के द्वारा अपने चारों ओर देखें, प्रकाश का घेरा निर्मित हो गया है, शक्तियों का घेरा निर्मित हो गया है जो बहुत पावरफुल है। और संकल्प कर दें इस प्रभामंडल में कोई तंत्र मंत्र, कोई ब्लैक मैजिक, किसी के निगेटिव विचार, किसी की वासनाएं प्रवेश नहीं कर सकती, रोज कम से कम सवेरे और सोने के वक्त। ये पावरफुल ऑरा हरेक को क्रिएट करना है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत आत्माएं बिना देह के भटकने लगेंगी। अब भी उनकी संख्या करोड़ों में पहुंचती जा रही है, पाप बढ़ रहा है, अशांति टेंशन बढ़ रही है, सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं, आपस में मारामारी बढ़ रही है। इसके कारण जो मृत्यु होती है उसको, उस आत्मा को पुनर्जन्म लंबे काल तक नहीं मिलता है। ये उसके पापों की सजा होती है कि वो बिना देह के ऐसे अंतरिक्ष में भटकती है जैसे कोई मनुष्य भूखा प्यासा बिना घर के संसार में भटकता हो, जिसका कोई आश्रय न हो। तो हमें अपने को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए चार ओर एक पावरफुल ओरा, एक शक्तिशाली प्रभा मंडल सोने से पहले भी हमें क्रिएट करना है, क्योंकि रात को ये आसुरी शक्तियां बहुत प्रबल हो जाती हैं, ये कहीं भी आती जाती हैं, हमें इनको रोक देना है। और आगे चलें, हम देख लें कि हमारा कोई अपना ही संस्कार तो हमारी खुशी को छीन नहीं रहा है, हमारी स्थिति को बिगाड़ तो नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं पाते हमारे सामने बहुत छोटी आती हैं और हम उनको बहुत बड़ा बनाकर उस चक्रव्यूह में स्वयं को फंसा देते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हमारी खुशी चली जाती है, हमारी स्थिति की मृत्यु हो जाती है। हमें बातों को छोटा करना है, बड़े हम हैं बातें नहीं। हमें स्वीकार कर लेना है कर्म क्षेत्र पर समस्याएं भी आएंगी। हम ये न सोचें हम बाबा के बन गए, हमने ज्ञान योग ले लिया तो हमारे जीवन में समस्याएं क्यों, बाबा हमें मदद क्यों नहीं कर रहा है। बाबा की मदद को प्राप्त करना भी एक स्थिति पर निर्भर करता है, वो भी एक कला है। जब हमारे पाप आड़े आ रहे हों, जब हमारी निगेटिविटी आड़े आ रही हो, जब हमारे अपने ही बुरे विकार हमारे सामने खड़े हों, तो बाबा की मदद का अनुभव होगा कहाँ। वो तो मदद करता है, लेकिन इन कारणों से वो मदद आत्माओं तक पहुंचती नहीं है। तो थोड़े हल्के हो जाएं, समस्याओं को भी थोड़ा हल्का लें और विशेष रूप से अपने को लोभवश कहीं उलझाएं नहीं। मैं सबको ये कहना चाहूंगा, जैसे और विकार बढ़ रहे हैं, लोभ भी बहुत बढ़ रहा है, और ज्ञान और योग सीखने के बाद भी मनुष्य के अंदर बहुत धन कमाने की अभिलाषा पूर्ण नहीं होती, अतृप्त रह जाती है। समय को पहचानते हुए हमें अपने को जरा समेट लेना है उलझाना नहीं है, ये भी एक रस स्थिति के लिए आवश्यक है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो गया, उनका जीवन सुख में बीत रहा था, उनका जीवन शांति में, उनके परिवार में खुशहाली छाई हुई थी, सब कुछ अच्छा था, लोभ आ गया, ये काम ऐसे करना है, पैसा वहां इन्वेस्ट कर दो, वहां कर दो, सब लगा दिया, लोभ वश और खाली हो गए, मैदान साफ हो गया, जो जीवन में, घर में, परिवार में, बच्चों में खुशहाली थी वो लोप हो गई, चले थे करोड़पति बन गए बनने और आगे रोड पर रोडपति बन गए। इन सब से स्वयं को बचाना है, हमें सबसे बड़ा खजाना मिल गया है, स्वयं भगवान। सोचो, भगवान को पाकर हम बस शांति से जीवन जिए, भगवान को पाकर हम तृप्त हो जाएं, भगवान को पाकर इस लोभ में, संसार की इच्छाओं के पीछे, दूसरों को देखकर, कंपटीशन में आकर हम अपने इस अनमोल जीवन को एक अशांति के गर्त में न धकेल दें। तो मेरी बात आप सभी समझ रहे होंगे, स्वयं अपने को उलझनों से बचाएं तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी ना। इस समय श्रेष्ठ स्थिति का महत्व है। मैं बार बार सबको कहता हूं कि आने वाले समय में धन नहीं पुण्य कर्म काम आएंगे, धन नहीं श्रेष्ठ स्थिति काम आएगी, मान शान नहीं योगयुक्त जीवन काम आएगा। आपने सेवाएं बहुत कर ली लेकिन सेवाओं में दिव्यता अलौकिकता नहीं रखी, टकराव में रहे, मान शान की इच्छाओं के पीछे भागते रहे, स्टेज क्रेज रहा आपको, स्टेज पर मैं ही जाऊं और कोई नहीं, मेरा ही नाम हो, तो आत्मा अपने को खाली पाएगी, ये सब चीजें कोई काम नहीं आएंगी। मैं तो अनुभवों से कहता हूं, बाबा की प्रेरणाओं को देखकर कहता हूं, आने वाला समय योगियों का होगा, आने वाले समय में उनके द्वारा सेवा होगी जिन्होंने अपने को सर्व खजानों से भरपूर किया होगा, जो खाली रह गए वो क्या संसार को दे पाएंगे। तो हम स्वयं को कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त करें। एक रस होना है तो एक से योगयुक्त होना पड़ेगा, एक शिव बाबा से, और जो ये कर्मेंद्रियों के रस हमें बाह्य मुक्ता की ओर ले जाते हैं इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। बहुत लोग खाने पीने के रसों में बड़े मगन रहते हैं, उसमें समय भी लगता है, और जीभ के रस से नुकसान क्या होता है, मन का रस समाप्त होने लगता है। किसी को बोलने का बहुत रस है, दिखावा करने का बहुत रस है, ठीक है वो व्यक्ति तत्काल तो खुश हो जाता है लेकिन उसका आंतरिक रस समाप्त हो जाता है। सुंदर सुंदर चीजें देखने में आंखें रस अनुभव कर रही हैं लेकिन ये जीवन को नीरस बनाने वाली चीज है, क्योंकि इससे हमारी शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। व्यर्थ सुनकर परचिंतन में बहुत लोग रहते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके जीवन में कोई समस्या नहीं, जिनके पास पैसा भी पर्याप्त है, परिवार भी बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसी कुछ हमारी बहनें माताएं हैं जो परचिंतन में रहती हैं, क्या क्यों में रहती हैं और सारा दिन अशांत रहती हैं, और कोई समस्या नहीं, घर में काम करने वाले नौकर भी हैं, उन्हें कुछ नहीं करना, वो चाहें तो अपने जीवन को संपूर्ण योगयुक्त बनाकर आनंद से भरपूर कर सकती हैं, वो चाहें तो संसार को बहुत कुछ दे सकती हैं, वो चाहें तो भगवान को अपने प्यार में बांध सकती हैं, लेकिन उनके परचिंतन ने, उनके व्यर्थ बातों की सुनने की आदत ने उनके चेहरे पर उदासी की झलक ला दी है, साफ दिखाई देती है, वो जीवन में खुश नहीं है, वो तृप्त नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है, ईश्वरीय प्राप्तियों से वंचित है। संभाले अपने को, इन सब चीजों से भला हमें क्या मिलने वाला है, क्यों परचिंतन करके हम अपनी एक रस स्थिति को नीचे उतारें, कमियां दूसरे की और परेशान हम, अवगुण उनके और धारण हम कर रहे हैं। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में सफाई करके सारा कूड़ा एक थैली में डाल के बाहर रख दे और आप उसे उठा के अपने घर में रख लें, ऐसा भला कौन बुद्धिमान होगा संसार में। लेकिन दूसरों की गंदगी अपने मन मंदिर में रखने की आदत बहुतों में है, ये गंदगी खुशी छीनती है, स्थिति पर अपना बुरा इफेक्ट डालती है। तो हम संकल्प करें, हमें तो अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। सारा दिन काम करके जब हम अपने घर लौटें तो आत्मसंतोष के साथ लौटें, हम एक प्रेशर के साथ घर न लौटें, हम टेंशन लेकर अपने बच्चों के पास न आएं, हम चिंताओं के साथ अपने घर मंदिर में प्रवेश न करें, खुशहाली से आए। जो कुछ आज हुआ है उसको वहीं छोड़कर, अपने दुकान में लॉकअप करके, अपने ऑफिस में वहीं पीछे छोड़कर हम अपने घर में प्रवेश करें। एक लक्ष्य बना लें, बाहर का प्रभाव घर में, घर का प्रभाव कामकाज पर हम न ले चलें। बिल्कुल दोनों को अलग कर देंगे तो इससे हमारी मनोस्थिति बहुत अच्छी रहेगी। तो ये संसार का खेल बहुत सुंदर रूप से चल रहा है, हम इसका आनंद लेंगे, हम अपने अंदर के संस्कारों को भी ठीक करेंगे। हम ये देख सकते हैं, सब अपने अपने अनुभवों को देखें, अपने जीवन पर एक दृष्टि डालें कि मनुष्य के अपने ही बुरे संस्कार उसे परेशान करते हैं, उसकी स्थिति को डाउन करते हैं। दूसरे के बोल कम, हमारे अंदर से निकली हुई व्यथा निगेटिविटी हमें नीचे उतारती है, उस पर ध्यान देंगे। और इसके लिए आप 5 स्वरूपों के अभ्यास को अवश्य करें, इससे हमारे देव संस्कार जागृत होते हैं। किसी के बोल और किसी का व्यवहार आपके ऊपर इफेक्ट डालता है। 2 चीजें बहुत होती हैं, निगेटिविटी और दूसरों का बोल और व्यवहार। कोई व्यक्ति आपको अपमान करता हो उसके शब्द, कोई व्यक्ति बार बार आपसे बुरा बोलता हो, आपको निरुत्साहित करता हो उसका ये व्यवहार, ऐसी चीजों का इफेक्ट बहुत ज्यादा मनुष्य की स्थिति पर आता है। तो पहले तो हम स्वयं को इस बात से सावधान करें, बिल्कुल ये सृष्टि का एक नेचुरल सिद्धांत हम जान लें, जो व्यवहार हम दूसरे से करते हैं वही व्यवहार कोई न कोई हमसे भी करेगा। हम किसी को गाली देते हैं, हमें गाली दी जाएगी। हम किसी को कटु वचन बोलते हैं, हमें भी कोई कटु वचन बोलने वाला मिल जाएगा। इसलिए पहले तो अपने व्यवहार को ठीक करें। अब बात रही कि दूसरे का गलत व्यवहार कर्म क्षेत्र पर हमारी इच्छाओं के प्रतिकूल होता है। हम प्यार से रहना चाहते हैं, कोई अपमानित शब्द बोलता है, हम बहुत अच्छी भावनाओं से अपना कार्य करना चाहते हैं, लेकिन कोई हमसे दुर्व्यवहार करता है, ऐसे में स्वमान की स्थिति, स्वमान का अभ्यास हमें बहुत मदद करेगा। हम जितना ध्यान दूसरों के शब्दों पर देते हैं उतना ध्यान जरा बाबा के शब्दों पर दें। कोई हमें बुरा बोल रहा है तब हम तुरंत याद कर लें, बाबा ने हमें कहा है तुम्हें मान अपमान सुख दुख निंदा स्तुति में समान रहना है। अब मैं इसकी बातों पर ध्यान दूं या भगवान की बातों पर ध्यान दूं, तुरंत आप में आत्म जागृति आ जाएगी और दूसरे के ऐसे व्यवहार को आप सरलता से ले पाएंगे, सहज रूप से पार कर पाएंगे। तो संकल्प करें, हमें सारा दिन खुशियों में व्यतीत करना है, हमें सारा दिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज में, अलौकिक अभ्यासों में व्यतीत करना है। बिना कुछ अभ्यास किए तो स्थिति एक रस होगी नहीं, नहीं तो कोई न कोई बाधा आकर हमारी स्थिति को अवश्य डाउन करेगी। मैं बीच में ही कह दूं, सोने से पूर्व भी हमें, जैसे हमने सवेरे अपने को पूरी तरह चार्ज किया था, सोने से पहले भी हम अपने को एक बार चार्ज करें, फ्रेश करें, सारे दिन के इफेक्ट से अपने को मुक्त करें। जैसे हम मुक्त अवस्था में आकर मुक्तिधाम में विश्राम करेंगे, बाबा को गुड नाइट करना हम बिल्कुल न भूलें। बाबा हमारे पास स्वयं आते हैं, मन पर कोई भी बोझ हो गया है वो बाबा को अर्पित करके सोएं, बाबा से मीठी मीठी बातें करके सोएं, फिर से उससे वही वरदान लेकर सोएं जो सवेरे लिए थे, तो सवेरे उठते ही वही वरदान हमें याद आएंगे और इस तरह हमारे 24 घंटे का जो इस सर्किल है वो सुखद हो जाएगा। तो बस सार रूप में यही याद रखेंगे कि हमें कुछ अभ्यास निरंतर सारा दिन करते रहना है। कर्म क्षेत्र पर जाकर हम अलौकिकता को पूरी तरह भूल न जाएं। जैसे किसी को गोली खानी होती है, कोई बीमारी है तो कैसे वो याद रखता है ना, ऐसे ही हमें कुछ अपनी प्रैक्टिसेज निश्चित रखनी है, याद रखनी है, अपने को कर्म में इतना बिजी नहीं करना है। और ये बिल्कुल मान लें, जान लें कि बहुत जल्दी जल्दी काम करने से गलतियां ज्यादा होती हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम करने से काम में देरी लगती है, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर कार्य करने में कम समय में ज्यादा काम हो जाएगा, निर्विघ्न रूप से काम होगा, सफलता पूर्वक काम होगा, कोई समस्या भी दिनचर्या में नहीं आएगी। तो याद रखेंगे, जितने अच्छे वाइब्रेशंस सारा दिन आप बनाकर रखेंगे उतना ही सफलता पूर्वक निर्विघ्न रूप से आपका कारोबार चलेगा, उतना ही आप तनाव मुक्त रहेंगे, उतना ही आप सारे दिन को एंजॉय करेंगे। ये लक्ष्य बना लें, मुझे बहुत खुश रहना है, कम मिला तो भी खुश, ज्यादा मिला तो भी खुश, अपेक्षा के अनुकूल सब कुछ हुआ तो भी खुश, थोड़ा बहुत प्रतिकूल भी होगा उसे भी स्वीकार कर लेना है। ऐसा नहीं कोई उल्टी बात हो गई तो सारा दिन उसका इफेक्ट मन पर लगा रहा, किसी किसी का ऐसा हो जाता है, सवेरे एक बात हो गई सारा दिन उसका इफेक्ट मानस पटल पर छाया रहता है, बाबा भी दूर गया, स्वमान भी दूर गए, अपनी श्रेष्ठ स्थिति भी दूर गई। तो याद रखेंगे, हमारे पास शक्ति है हर समस्या को समाप्त करने की, हमारे पास शक्ति है माया के प्रकोप से स्वयं को बचाने की, हमारे पास शक्ति है अपने हर संकल्प को पूर्ण करने की, हमारे साथ स्वयं भगवान है। ऐसी कुछ चीजें कम से कम 5 आप रख लें अपने पास, जिसको आप दिन में 5 बार अवश्य याद किया करें, जो मैंने अभी आपको बताई, और जोड़ लें मेरे साथ बाबा 1000 भुजाओं सहित है, उसकी छत्र छाया मेरे सिर पर है, मन के बोझ उसे देते चले। मान लो आप रखेंगे हर 3 घंटे में मुझे अपने मन को पूरी तरह फ्रेश करना है, मन के सारे बोझ एक बार बाबा को अर्पित कर देने हैं, कोई भी बोझ आ गया हो, कोई टेंशन आ गई हो, अपने को रिलैक्स करें, 5 मिनट बैठ जाएं, लगातार न चलाएं अपने को। हो क्या रहा है, टेंशन में फंसा हुआ व्यक्ति लगातार चलाता है, बीच में अपने को रिलैक्स नहीं करता। आप 5 मिनट शांति में बैठ जाएं, बिल्कुल आपका योग नहीं लगता कोई बात नहीं, आप शांत में बैठें, अच्छा चिंतन करें, मेरे साथ कौन है, ये बात तो बहुत छोटी थी, मैं इसमें क्यों उलझ गया, ये तो आई गई हो गई, किसी ने मुझे कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ, मैं बड़ा हूँ, बड़ों को सुनने के लिए तैयार रहना ही चाहिए, अगर मैं छोटा हूँ तो बड़ों का अधिकार होता है छोटों को कुछ भी कह देना, बी लाइट। ऐसी कुछ बातें अपने पास रखें, ऐसा बीच बीच में शांत में बैठ जाएं, अच्छे चिंतन में बैठें। लोग क्या करते हैं कि योग की खिंचातान बहुत करते हैं, परंतु नहीं, अगर आपका योग नहीं लग रहा तो आपका सुंदर चिंतन आपको निगेटिविटी से बचाएगा और इस तरह आपकी सारी अवस्था एक रस हो जाएगी। आपको भी अनुभव होगा हमारी दिनचर्या बहुत सुखद बीती, जैसे आज हमने कुछ किया ही नहीं। ये हमारी सर्वश्रेष्ठ स्थिति होगी कि जैसे फ्रेश हम सवेरे थे वैसे ही फ्रेश हम शाम को भी हैं। तो कर्म का इफेक्ट बार बार हमारे ऊपर ना आए, हम कर्म के परिणाम को भी बाबा पर समर्पित करते चलें। ये भी एक बहुत सुंदर अभ्यास है, ये श्रेष्ठ पुरुषार्थियों का अभ्यास है। तो इस तरह सुंदर चिंतन के साथ, स्वमान के संकल्पों के साथ, खुशी के संकल्पों के साथ, आत्म जागृति को कायम रखते हुए हम अपनी दिनचर्या में आगे बढ़ें और रोज स्वयं को चार्ज करना नहीं भूलेंगे। ऐसा ना हो एक दिन ढीले हो गए तो दूसरे दिन और ढीले, फिर तीसरे दिन और ढीले, और इस तरह एक दो मास में तो पूरे ही ढीले। नहीं, अगर कुछ ढिलाई आ भी गई है उसे रात को ही कवर करके सोया करें, अगले दिन कवर कर लिया करें, तो कोई भी गिरावट कंटिन्यू ना हो, हम निरंतर आगे बढ़ते चलें। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो बाबा की ब्लेसिंग्स भी हमें बहुत मिलती रहेंगी और हमारा जीवन भी एक रस हो जाएगा, हमारी खुशी भी एक रस हो जाएगी, हमें बहुत बहुत आत्मसंतोष प्राप्त होगा। ओम शांति।